Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
We've been having one day of Krishna Katha. जुमे हर रोज ब्रह्मा प्रतिदिन कृष्ण कथा का ऐसा हो रहा
One day the killing of Agasura, one day the Putana of Ag, and my day was
Govardhan.
So if you don't mind, we'll talk about
Govardhan.
So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Just before the Govardhan Puja Lila, Lord Krishna had sent his cowherd boyfriend to the yajnik Brahmins for begging something to eat.
Govardhan Puja, होने से पहले संगीता ये है कि भगवान कृष्ण ने भगवान वालों को कैसी ब्राह्मणों के पास भिक्षा मांगने के लिए भेजा था।
So when Lord Krishna's cowherd boyfriends went to the Brahmins for something to eat because Krishna and Balaram were hungry,
वाल गए थे ब्राह्मणों के पास भिक्षा मांगने के लिए। अपने कृष्ण बलराम से हम होते थे।
The Brahmin said, "We are doing Vedic yajna. Don't disturb us."
ब्राह्मणों ने कहा कि हम वेदिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप हमको इसके अवरोध मत करके।
Even though the purpose of Vedic yajna is to satisfy Vishnu, and Vishnu sending his friends, Lord Krishna sending his friends, begging something. They're saying, don't disturb.
तो सारे यज्ञों का उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अभी इधर भगवान कृष्ण स्वयं भेज रहे हैं अपने बाल बालों को कुछ शिक्षा मांगने के लिए, तो उनको बोलते हैं कि आप अवरोध मत डालो।
And the cowherd boyfriends, they were upset because they didn't bring anything for Krishna and Balaram to eat.
बाल बाल बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनको कृष्ण बलराम के लिए कुछ लेके नहीं आ सके।
Balaram and Krishna, Lord Krishna said, don't worry. That is the way of begging. Sometimes you get something, and sometimes people say no.
So Krishna said, चिंता मत करो, यही है भिक्षा का वृत्ति का, यही है कि कभी हम भिक्षा मांगने जाते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं लेते हैं, वो तो कहते हैं कि नहीं।
Now you go and you ask the wives of the Brahmins for something, for Krishna and Balaram.
ठीक है, आप अभी जाओ, जाके ये विष्णु पत्नी है, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाके भिक्षा मांगो।
So the cowherd boyfriends of Lord Krishna went to the wives of the Brahmins and requested for something for Krishna Balaram to eat.
तो बाल बाल गए विष्णु पत्नियों के पास और जाके उनसे भिक्षा मांगी कृष्ण बलराम के लिए चाहिए।
And immediately the wives of the Brahmins, they were very happy to give for something to eat for Krishna Balaram.
तो तुरंत विष्णुपतियों को बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि और उन्होंने क्या किया, उनको बाल बालों को दान किया।
And after that, the Brahmins realized their mistake.
उसके बाद ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
And that actually they learned from their wives the proper behavior. And they felt ashamed of not having understood the position of
Krishna.
So just after this pastime, Krishna and Balaram, they noticed that Nanda Maharaj and the other cowherds then were organizing some program.
तो तुरंत इस किला के पास कृष्ण बलराम और सारे ग्वालों ने देखा कि उन्होंने नंद महाराज और उनके अन्य साथियों के साथ एक बड़ा उत्सव मना रहे हैं.
कृष्ण इज द सुपर सेल्फ, ही नोज एवरीथिंग.
कृष्ण परमात्मा होने के नाते वो सब जानते हैं.
बट ही स्टिल ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट इज दिस सेकंड.
फिर उन्होंने पूछा कि उनके पिताजी से कि क्या है आपकी क्या कर क्या रहे हुआ.
The super soul knows each and everything. We know something about our sphere of activities.
So, Paramatma होने के वजह से किसी को हर चीज मालूम रहता है. लेकिन हम आत्मा होने के वजह से केवल हमको सीमित रूप से अपने जो संबंधी चीजों को हमको एहसास होता है.
If you have a pain in your foot, you are conscious of that.
हमारे पैर में अगर कुछ दर्द होता है तो केवल उस दर्द के प्रति केवल हम ही सचेत रहेंगे. लेकिन कोई और व्यक्ति या मैं उसके प्रति सचेत नहीं होगा.
The living entity is aware of the pains and pleasures of this body, but not necessarily aware of the pains and pleasures of other bodies.
तो एक चीज होता है केवल अपने ही शरीर के संबंधित सुख और दुख के प्रति सचेत रहता है. लेकिन अन्य शरीर अन्य जीवों का जो सुख और दुख है उसका उसका अवगत नहीं रहता.
This way, the Bhagavad Gita refers to the conditioned soul as the kshetra jnana, the knower of the field.
इसलिए भगवद गीता में आत्मा को जीव को कहा गया क्षेत्र ज्ञान, जो क्षेत्र को जानता है.
But the Supreme Lord is also known as Kshetrajna.
भगवान को भी क्षेत्रज्ञ कहा गया है.
But the difference between the conditioned soul and the Supreme Lord is that the Lord is aware of all pains and pleasures of your body, my body. He's aware of everything.
लेकिन वो जीव क्षेत्रज्ञ और भगवान क्षेत्रज्ञ हैं कि दोनों में अंतर यह है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं वो मेरे शरीर आपके शरीर अन्य सारे इतने शरीरों के साथ जो भी हो रहा है वो सबके प्रति वो ज्ञान है.
Just as the living entity consciousness is spread throughout the body, he's aware of what's going on in his body.
जैसे जिस प्रकार के जो अनुआत्मा है उनकी जो चेतना पूरा शरीर भर व्याप्त है.
In the same way, the Supreme Lord, his consciousness is spread throughout the whole universe, the whole creation.
प्रकार जो भगवान की जो चेतना है वो पूरा विश्व भर में पूरा ब्रह्मांड में उनका चेतना फैला हुआ है.
But still, Krishna was inquiring from Nanda Maharaj, what is this sacrifice you're performing?
फिर भी कृष्ण नंद महाराज से पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन सा ये चल रहा है.
He said that I really want to know and please tell me why you're making this arrangement.
तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की बड़ा व्यवस्था जो है वो क्यों कर रहे हैं.
The saintly persons they don't consider mine and others. They consider everyone equally.
उन्होंने कहा था किया कि एक साधु पुरुष होते हैं वो मेरा है उसका है इस प्रकार को भेदभाव नहीं करते हैं. वो हर व्यक्ति को हर जीव को
You may avoid telling an enemy, or you may avoid telling somebody who treats you neutral, but you can't avoid telling a friend.
आप जो है एक दुश्मन को बताने से आप रोक सकते हो अपने आप को, और आप अपने जो साथ कोई संबंध नहीं है उसके साथ भी आप इस प्रकार व्यवहार कर सकते हो. लेकिन मैं तो आपका आप्त हूँ तो आपको तो मुझे बताना ही पड़ेगा.
Especially you can't keep a secret from a family
member. रहस्य जो है अपने आप अपने बंधुओं से छुपाना ही चाहिए.
People who perform things in this world, Krishna said, if they do it without knowledge, they don't get as much benefit as if they do it with knowledge.
तो कृष्ण ने भी तर्क दिया कि जो ज्ञान के बिना जो कार्य किया जाता है उसका फल कार्य का फल उतना नहीं मिलता है जितना ज्ञान के साथ किया जाता है.
People that do things in knowledge, they can achieve success. Where people who are ignorant of what they're doing, they cannot.
जो ज्ञान के साथ कार्य करते हैं, वो निश्चित रूप में सफलता को प्राप्त करते हैं. लेकिन जो ज्ञान के बिना जो कार्य करते हैं, उसमें सफलता उनको इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता है.
So please explain to me what is this sacrifice you're doing? Is it according to the Vedas, or is it a ritualistic? Ceremony or is it some traditional ceremony?
So, ये बताइए कि आप ये जो कार्य कर रहे हो, क्या ये वेदों के प्रमाण के ऊपर आधारित है, या कोई कुछ परंपरागत कुछ कार्य है, या कुछ औपचारिकता का कुछ कार्य है?
So then, at first, Nanda Maharaj, he wasn't paying much attention.
सबसे पहले नंद महाराज जो है ज्यादा कृष्ण के इस प्रकार के तर्कों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे.
You know, children are always asking questions. Sometimes parents get tired of so many questions. What is this? What is that? What is this? So after some time, the father just ignores the child.
कुछ समय के बाद पिताजी जो है बच्चे को नजरअंदाज कर देते हैं.
There's one nice story about a father and his son, and they were watching the grown-up son, father. They were watching the cricket match.
एक कहानी है एक पिताजी और उनके छोटा बड़ा पुत्र का दोनों साथ मिलके क्रिकेट का खेल देख रहे थे.
So while they were watching the cricket match, the father pointed to a crow outside the window and asked the son, "What's that?"
So, एक उस समय कौवा आके खिड़की पे बैठा था. पिताजी ने उससे पूछा कि ये क्या है, ये कौवा क्या है?
So the grown-up son said, "That's a crow."
तो जो बड़ा लड़का है उसने कहा कि ये कौवा है.
After some time, they were watching the cricket match. The father again said, "What's that out there?"
कुछ समय के बाद पिताजी ने वापस पूछा कि वो क्या चीज
है. ग्रोन अप सन सेड आई टोल्ड यू इट्स अ क्रो.
तो फिर वापस उसने जवाब दिया कि मैंने कहा था ये तो कौवा है.
So they again watched the cricket match and after some time the father again said what's that out there.
तो वापस उन्होंने पूछा कुछ समय के बाद कि वो क्या है.
Then the son became angry. He said, "I told you it's a crow. I'm trying to watch a cricket match. Leave me alone, will you?"
क्रिकेट का खेल देख रहा हो, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मैं बार बार कितनी बार बोलो ये कौवा है.
So the father said, "When you were 2 years old, we were sitting, and you asked me 25 times what that was out there, and every time I answered."
तो जब दो साल के हुए थे, तो तुमने इसी प्रकार का जो प्रश्न 25 बार पूछे, मेरे पास इस बार तुमको ही जवाब दिया.
So that's the nature of children. They're always asking
questions.
So, Nanda Maharaj, he began to reply to Lord Krishna that this sacrifice is being offered to Lord Indra.
Nanda Maharaj, so, अंतिम में उन्होंने कहा कृष्ण को कि ये जो यज्ञ जो चल रहा है वो इंद्र के लिए चल रहा है.
Lord Indra is the master of all the clouds, and the rain comes from clouds.
Indra जो है वो बारिश में भी बादल है, उसके विस्तार देव है, और बारिश जो है बादल से आता है.
So by accepting our sacrifice, Lord Indra will be pleased, and therefore will have sufficient rainfall.
तो अगर हम प्रसाद यज्ञ करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होके हमको भरपूर बारिश प्राप्त होगा.
So the rain that comes from the clouds that are controlled by Indra are required for production of the rain.
तो जो ये बादल जो आते हैं इंद्र से वो बादल के वजह से बारिश आता है, वो बारिश के वजह से अन्न उगता है, धान उगता है.
If we have sufficient grains, then we can have sufficient necessities of life. And we'll be able to fulfill the three goals of life, which is dharma, artha, and kama. And this way we'll become, by this way we'll become successful in our fruitive activities.
तो इस प्रकार हमारे जो कर्म है उससे हम फल प्राप्तता को प्राप्त करते हैं.
And it's, this is more or less a traditional sacrifice we're offering to Lord Indra, and therefore persons who reject it, they can't become successful in life.
तो ये जो हमारी परंपरा के अनुसार ये संसार स्थिति आ रही है, ये जो नैतिक विधि हम इसको करेंगे और जो नहीं करता है तो उसको.
So Lord Krishna replied to his father, knowing that his reply would anger Lord Indra.
So Krishna ne apne pita ji ne maharaj ko is prakar uttar diya. Ye jante hain ki ye jo uttar hai jo Krishna de rahe hain wo Indra ko prasann nahi karne wala hai.
Lord Krishna began to explain one atheistic philosophy.
तो कृष्ण महाराज को एक नास्तिक दर्शन के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगे.
And that's called karmavad or karma mimamsa philosophy.
इसको कर्मवाद या कर्म मीमांसा दर्शन कहा जाता है.
Many times you meet people and they say work is worship.
बहुत सारे लोगों को आप जब मिलोगे तो बहुत जो कहते हैं कि काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है.
This idea is an atheistic idea.
ये जो है वो नास्तिकों का विचार है.
Everyone has a certain karma that they're coming to this world with.
तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कर्म होता है जिसको लेकर इस संसार में आते हैं.
And because of that karma, the karma mimamsa say, one's destiny is shaped.
तो कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार जो हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार आता है तो उस कर्म के अनुसार अपने बलों का अनुभव करता है.
सो इफ यू जस्ट फॉलो योर कर्मा दैट्स सफिशिएंट फॉर यू टू मीट योर डेस्टिनी.
जो आपके कर्म के अनुसार जो भी करना है वो करते जाइए तो आपका जो फल है आप वो निश्चित रूप से प्राप्त होना ही है.
एंड दैट ड्यू टू आवर कर्मा वी हैव अ सर्टेन नेचर. And that, and therefore, karma becomes supreme for us.
So, ये कर्म के अनुसार हमको एक प्रकार का स्वभाव प्राप्त होता है. इसलिए वो जो कर्म है, वो सर्वोच्च माना गया है.
And even if there's a supreme controller, still. He is dependent on the living entities to perform activities so that even if he can award them or he can punish them. If they don't perform activities, therefore how will he award them and how will he punish them? So he also becomes just a part of karma.
If we जीवों के द्वारा किया गया कर्म के ऊपर आधारित हो जाते हैं अगर जीव कर्म नहीं करता तो ईश्वर को कर्मों का फल प्रदान करने के लिए नहीं रह जाता. इसलिए ईश्वर भी कर्म का भागीदारी बन जाता
है. When the material elements are there, the material elements interact with the three modes of material nature, and therefore the material world manifests various varieties.
अभी और एक दर्शन को प्रस्तापित करते हुए और इस तत्व को प्रस्तापित करते हुए मैंने कहा कि ये भौतिक तत्व है अपने आप में परस्पर में अपने आप में वो मिल जाते हैं और उसके परिणाम उत्पन्न होते हैं.
So the so then ultimately the modes of material nature become the controller.
तो इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार ये जो तीन गुण हैं वही भगवान या ईश्वर हो गए.
And after all, there's activities of Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras.
ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कार्य है वो
the Brahmins, they worship the Lord by performing Vedic sacrifices and chanting mantras.
So, Vedo ke anushthan karte hue, mantra uchcharan karte hue, Brahman log bahut prasanna rehte hain.
And the Kshatriya is by protecting the earth.
Kshatri jo hai wo prithvi ko wo samrakshan karte hain.
And the Vaishyas by farming and protecting cows and trading.
Vaishya jo hai wo goraksha aur vanijya ke dwara wo kaam karte hain.
And the Shudras by serving the other.
Shudras jo hai ऊंचे जातियों का सेवा करते हैं.
But since we are Vaishyas, and since we live in the forest, we're depending mostly on the cows.
So हमने कहा कि कृष्ण गानंद महाराज को कि हम वैश्य होने के नाते हम गायों के ऊपर निर्भर करते हैं, खेती के ऊपर निर्भर करते हैं.
We're not even farming so much, we're not trading. Mostly we're just depending on the cows.
So हम जितना वो खेती बाड़ी है और वाणिज्य है उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा गायों के ऊपर निर्भर करते हैं.
So instead of performing yajna for Indra, I suggest that we worship the cows.
So इंद्र का पूजा करने से अच्छा है कि मेरा प्रस्ताव ये है कि हमको गायों को पूजा करना होगा.
We can worship the Brahmins and Govardhan Hill, because Govardhan Hill gives all the nice grasses for the cows to eat.
So हम गावों को पूजा करेंगे और गोरों को भी पूजा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन जो है हमारी गायों के लिए बहुत सुंदर घास भी प्रदान करता है.
So at first Nanda Maharaj suggested, okay, we can do a sacrifice for Govardhan. Just after we complete this sacrifice for Indra, we'll collect all again the paraphernalia and do another sacrifice for Govardhan.
Nanda Maharaj ne kaha, theek hai, ye Indra ko sampurn hone do. Indra ko prasanna karne ke baad hum wapas aur ek yajna karenge, jiske dwara hum Govardhan ko prasanna karenge.
But Krishna insisted, no, there isn't time. Let us use whatever we collected now for worshipping the Brahmins, the cows,
the gangas.
And Krishna began to explain the way to worship Govardhan.
So Krishna jo hai Govardhan ko kaise puja karna chahiye uska varnan karna shuru kar
diya. He said that many preparations should be made. Like samosas, kachori, all kinds of pakan.
So unhone kaha ki kis prakar puja karna chahiye Govardhan ka, unhe ek bada diya kachori hai, anya anya vyanjan hai, sabko pakana chahiye.
Well, there's pakana and there's kachana.
Ek aisa hota hai, kuch pakana hota hai, kuch kachana hota hai.
If we hear the word kacha, nobody likes kacha. But actually what it means is fried foods, that's pakana, like puris and samosa, these are pakana. And kachana is sabji, rice, dal, those things that are not fried.
Jo tala jata hai usko pakana kaha jata hai. जो बॉइंड के अंदर सब्जी है, राइस है, इत्यादि जो है वो कच्चा अन्न खा जाता है.
सो कृष्ण सेड बोथ शुड बी मेड एंड स्पेशली स्वीट राइस एंड एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू द हिल.
तो हर प्रकार का व्यंजन को बनाना चाहिए और खास करके जो मिष्ठान है वो भी बनाना चाहिए.
एंड यू शुड फीड ऑल द ब्राह्मण्स.
और सारे ब्राह्मणों को भी आपको खिलाना चाहिए.
एंड देन कृष्ण सेड यू शुड ऑल्सो फीड द डॉग्स.
कृष्ण ने कहा कि इन्हें आपको कुत्तों को भी खिलाना चाहिए.
एंड यू शुड इवन फीड द डॉग ईटर्स.
और ये जो कपट होते हैं उनको भी खिलाना चाहिए.
एंड स्पेशली फीड द काउस.
खासकर गायों को खिलाना चाहिए.
सो कृष्णा इज instruction was that everybody, from the Brahmins down to the dog eaters, all should be fed.
So Krishna ka yehi kehna tha ki Brahmanon se leke Prabhasho ke tak har prakar ke vyakti ko khilana chahiye.
Actually, when the American athlete went to Korea for the Olympics,
तो एक बार जो अमेरिका के जो एथलीट होते हैं बार बार के प्रतियोगिता में भागने वाले वो जब एक बार कोरिया गए थे
they were very surprised to see that the people in Korea used to eat dogs.
तो उनको बहुत आश्चर्य लगा कि कोरिया में लोग जो है कुत्ते का मांस खाते हैं.
Because in America, American people are very fond of dogs.
तो अमेरिका में जो लोग हैं कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं.
The dog's the man's best friend, they say in America. Now in India it's becoming also dog's man's best friend. Instead of cow's man's best friend, dog's
अभी आजकल भारत में भी इसी प्रकार हो गया है. पहले जो गाय था वो मनुष्य का सबसे करीब मित्र था, अभी जो कुत्ते को मित्र बना लिए
हैं. When these American athletes went to Korea, they saw that the people were eating dogs.
तो जब अमेरिका उनके लोग अच्छी जो भाग्य की प्रतियोगिता में लेने वाले कोरिया गए थे तो उधर कोरिया में देखा कि कोरिया के लोग जो है गाय का कुत्ते का मांस खा रहे.
So this is the lowest rung of edibles, dog eating.
जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं ये एकदम बिल्कुल निम्न स्तर के होते हैं.
So then Nanda Maharaj accepted the instructions of Lord Krishna out of affection for his son, and he performed the ritual of worshipping Govardhan Hill.
So Nanda Maharaj, ये पुत्र की मौत है, पुत्र का कृष्ण इतना प्रेम करते प्रेम पर, जिसने कृष्ण का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया और गोवर्धन का पूजा कर.
They fed the Brahmins, they fed all the other members of society and especially the cows.
सारे ब्राह्मणों को गायों को सभी जितने भी उधर के लोग हैं सबको उन्होंने भोजन दिलाया.
And he had the Brahmins chant the Vedic mantras to bring auspiciousness.
तो उन्होंने ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों को उच्चारण कराया ताकि शुभ 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 का आह्वान करने के.
And we also have a Vedic mantra to bring about auspiciousness.
हमारे पास एक वैदिक मंत्र है शुभता को आह्वान करने के.
The Hare Krishna mantra is a Vedic mantra.
जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो वैदिक मंत्र है.
And by chanting Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Everything becomes auspicious.
तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के द्वारा सब कुछ शुभ हो जाता है.
So keeping the cows in front, all of the Brijbasis, along with Krishna and Balaram, they circumambulated Govardhan Hill.
So, सारे पूरे ब्रजवासी हैं कृष्ण और बलराम साथ में गायों को आगे रखते हुए पूरा गोवर्धन का परिक्रमा किए.
All of the gopis, they were sitting in bullock carts and they were also going in the parikrama chanting the glories of Lord Krishna.
ये गोपियां हैं वो सब जो बैल गाड़ियों में बैठ के पूरा परिक्रमा में भाग लिए. परिक्रमा करने के समय उन सब लोगों ने कृष्ण का गुणगान किया.
And as at some point they saw that there was a huge farm that actually had expanded from Krishna on top of Govardhan Hill.
उस समय के बाद वो देखे कि एक बहुत बड़ा विराट रूप दिखाई पड़ा जो कोई और नहीं था कृष्ण का ही विस्तार था.
And the Brijbasis could understand that Govardhan Hill was non-different from Krishna.
तो ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है वो कृष्ण से भिन्न है.
And Krishna said, "Oh, just see this wonderful form that has manifested." And he also offered obeisances to them all.
तो कृष्ण ने सबको कहा देखो कितना अद्भुत रूप है और ये कहते हुए कृष्ण स्वयं उस गुरुदाई रूप जो गोवर्धन है उनको प्रणाम किया.
Lord Krishna said, "This Govardhan Hill can assume any form he wants, and he's assumed this gigantic form."
So Govardhan Hill, it can assume any form.
And Anyone who doesn't worship this form of Govardhan will be bit by the snakes that are on Govardhan Hill and be killed.
जो पूजा नहीं करता है तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितने भी सांप है उसके द्वारा वो ढक के मर जाएंगे.
So let us offer our obeisances for our own safety and the safety of the cows.
तो गायों की रक्षा के लिए और जिनकी हमारी स्वयं रक्षा के लिए सभी लोग चलिए गोवर्धन का पूजा करेंगे.
So in this way, the Brij Vasis, along with Krishna and Balaram, worship the Brahmins, Govardhan, and the cows.
इस प्रकार कृष्ण और सारे ब्रजवासी सभी लोग ब्राह्मणों को गोवर्धन को और सारे गायों को पूजा
करते.
उसके बाद सब लोग में वापस आ गए.
So when Indra understood that his sacrifice had been stopped, he became very angry.
इसे इंद्र को मालूम पड़ा कि मेरे लिए जो यज्ञ किया जा रहा है वो सब कुछ बंद कर दिया गया है तो तुरंत उनको बहुत क्रोध आया.
इंद्र, he realized that his sacrifice had been stopped by Nanda Maharaj and the cowherd.
तो इंद्र को जब मालूम पड़ा कि नंद महाराज और जितने भी लोग हैं मेरे लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं.
इंद्र, being very angry, he called for the Samvartaka cloud, which is the cloud that manifests at the time of the devastation of the universe.
So tamai indra ke krodh mein jo lai ke samay jis badal ke dwara barsha hoti hai wo samvartak naam badal ko bulaya.
And he sent the clouds to Vrindavan. Go to Vrindavan and rain down on them.
So unhone aagya diya samvartak badal ko jao Vrindavan jaake aap पूरा बारिश गिराओ.
These inhabitants of the jungle, they're all junglies.
ये जो जंगल में रहने वाले वो जंगली लोग हैं.
But they have some prosperity.
और उनको थोड़ा समृद्धि हुई है.
And they become too much proud.
ये समृद्धि की वजह से बहुत अहंकार हो गया उनको.
They have so much opulence due to their cows.
तो ये गायों की वजह से और अन्य चीजों की वजह से उनको बहुत समृद्धि हो गई.
So you go there and destroy all their cows.
सारी संपत्ति है और गायों को सब आप नाश कर दो.
But the clouds were thinking, अरे that's Krishna. They're little.
ये तो कृष्ण है.
They're little afraid.
उनको भय भय लग रहा था.
So Indra said, don't worry, I'm behind you.
तो इंद्र ने कहा आप चिंता मत करो मैं तुम्हारे पीछे.
So the clouds went there and they began to shower down torrents of rain.
ये बादल ने उजाड़ के ऊपर और बहुत सारा बारिश गिराने लगा.
So much rain was coming down.
इतना सारा बारिश गिरने लगा.
Actually, Indra, he had become extremely offensive.
तो इंद्र जो है बहुत ज्यादा वो अपराधी बन गए.
This man, if he was a demon, we know Krishna what he would have done.
तुमको मालूम है अगर ये इंद्र अगर राक्षस होता तो कृष्ण क्या करते हमको मालूम है.
Like the other demons that came to Vrindavan, they were all finished.
अब आपके आगे जो असुर थे वो सबको कृष्ण ने मार दिया.
But Krishna deals with the devotees differently.
कृष्ण जो है भक्तों के साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार करते हैं.
Certainly Indra was offensive.
तो इंद्र जो है निश्चित रूप में अपराधी था.
Just listen to this verse. Vachalam balisham staptam agyam pandit maninam krishnam martyam upasritya gopa me chakshur apriyam. He tells, these cowherd men have acted inimically toward me by taking shelter of this ordinary human being Krishna, who thinks himself very wise, but who's simply a foolish, arrogant, over-talkative child.
तो ये जो कृष्ण है वो ये अपने अहंकार की वजह से अनेक अनेक बच्चों वाली बात किया, बच्चों की बातें किया और अपने आप को पंडित मानता है और किसी का बात सुनने वाला नहीं है और मूर्ख भी है.
तो ये फैंस है ना. But Śrīla Lakṣmanāna Chakravarti Thakur explains, all of these offensive words, by the mercy of Sarasvati, the goddess Sarasvati, in glorification of Krishna.
So Śrīla Lakṣmanāna Chakravarti Thakur explains, all of these offensive words, by the mercy of Sarasvati, the goddess Sarasvati, in अपराध माना जाता है, लेकिन सरस्वती कृपा से ये शब्द अत्यंत कृष्ण का गुणगान करने वाले शब्द है.
So, Balisa means just like a child.
बालिश का अर्थ है कि एक छोटा सा बच्चा.
But if we notice that children are free from any kind of pretension.
तो आप सबको मालूम है, बच्चे जो होते हैं वो कोई उनके अंदर कपटता नहीं रहता है.
They're not arrogant.
तो उनके अंदर उस प्रकार का ये जो हटर
they don't
have any hypocrisy. कपटता नहीं
रहता. There's a nice story in that regard. There was a king, and there was a special ceremony in his kingdom.
एक स्थान है जहाँ कहा जाता है कि एक बड़ा उत्सव हो रहा था एक राज्य में.
And he wanted a special set of clothes.
तो उनको एक विशेष राजा को एक विशेष वस्त्र चाहिए.
So he commissioned a tailor to make some clothes.
तो एक टेलर को बुलाया, दर्जी को बुलाया, ताकि आप एक विशेष वस्त्र बनाओ.
So the tailor took a long time to make these clothes, and finally the king was becoming a little upset. So he called for the tailor, "Where is the clothes?"
So ये जो दर्जी है बहुत समय ले रहा था वो वस्त्र बनाने के लिए. तो राजा बहुत परेशान थे, बुलाया दर्जी, बुलाया कहाँ है वस्त्र, कहाँ है.
So the tailor said, "I'm bringing the clothes tomorrow, but one thing about these clothes I want you to know."
मैं कल वस्त्र को मैं कल लेके आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आप बताना चाहते हैं वस्त्र के विषय में.
If somebody is very foolish, they won't be able to appreciate these clothes. They won't be able to see the clothes.
अगर कोई मूर्ख है तो ये वस्त्रों को देख नहीं सकता है.
So the king said, "Okay, bring the clothes."
तो राजा ने कहा, ठीक है, वस्त्र है, लेके आओ वस्त्र को.
So the next day he brought the clothes, but the king couldn't see them.
तो अगला दिन जो है वस्त्रों को लेके आए, लेकिन राजा जो है उन वस्त्रों को देख नहीं पाए.
So the king didn't want everybody to know that he was foolish, so he said, "Oh, very nice."
राजा को ये लोगों को पता नहीं लगाना था कि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि वस्त्रों को देख क्या बहुत अच्छा वस्त्र है.
And he turned to the ministers and he said, "What do you think of the clothes?" And although the ministers couldn't see the clothes, they said, "Oh, very nice." When you go tomorrow in the city in these clothes, everyone will be surprised.
अगले दिन अगर आप ये वस्त्रों को पहन के आप शहर में जाओगे तो सभी लोग इतना मचंबित हो जाएंगे वस्त्रों को देख के.
So the king went in his new clothes, and everybody had heard about these clothes, and they were all saying, "Oh, what wonderful clothes! Wonderful clothes!"
तो सभी को मालूम था कि वस्त्रों के विषय में मूर्ख व्यक्ति वस्त्रों को देख नहीं सकता. तो इससे जब राजा भक्त के वस्त्रों को पहन के जब बाहर निकले तो
राज में सभी लोग बोलने लगे,
ये वाह क्या अद्भुत वस्त्र है.
वन स्मॉल बॉय,
ये एक छोटा सा बालक है,
विदाउट एनी प्रिटेंशन,
जब उसके पास कोई कपड़ता नहीं थी.
हाउ कम द किंग हैज नो क्लोथ.
तो बोल रहे कि ऐसा कैसा है, राजा नग्न है.
सो कृष्ण इज लाइक दैट, नो प्रिटेंशन, ही डजंट सी, "You know, I'm very great, this one's very small." He sees everyone equally.
So Krishna jo hai unke andar koi kapta nahi hai, unke andar ek bhav nahi hota hai ki main bahut bada vyakti hu, idhar se chote hai, ek pata nahi dekhte, unke andar koi kapta ki bhav nahi hai.
So Balisa,
ye Balisa hai.
And the word stabham,
It
means that because Krishna is Bhagavan, he's filled with all six opulences. Huh? There's no one for him to bow down to because he's the most beautiful, the most knowledgeable, the most renowned, the most opulent of wealth. So there's no one for him to bow down to.
तो कृष्ण पद्म इसलिए है क्योंकि वो स्वयं भगवान होने के नाते उनके पास ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, सारे उनके सुंदरता है, बल है, यश है और ऐश्वर्य है, ये सब कुछ संपन्न होने की वजह से हम किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है.
अज्ञान means that because he knows everything as the Paramatma, he knows everything about everything. There's nothing more for him to be known, to know. So therefore, Ajnana.
So Yajnana Shabda ka Sanskrit arth ye hai ki Krishna har cheez ko jante hai, isliye unke paas aisa koi cheez nahi hai jo wo nahi jante.
And Pandit Manisha means that all the Pandits who are very, very wise and have so much knowledge, they're all are attracted by Krishna.
जो पंडित माने हम ये जो शब्द का आती है कि सारे पंडित लोग कृष्ण को मानते हैं क्योंकि सारे जो ज्ञान का स्रोत कृष्ण है और सारे पंडित को मान जाते हैं कि कृष्ण ही सारे ज्ञान का स्रोत है.
And Krishna Martyam means that Krishna is so kind to all of his devotees that sometimes he comes as an ordinary human being just for the pleasure of his devotees.
तो मध्यम ये शब्द का अर्थ ये है कि कृष्ण जो है वो इतने सारे जो जीव है को प्राप्त करने वाले उन सबको आनंद प्रदान करने के लिए उन्हीं के जैसा शरीर को धारण करके लीलाएं संपन्न करते हैं.
So this is the way that Srila Vishwanatha Chakravarti explains that the goddess Saraswati made the verse a positive glorification of Krishna.
तो इस प्रकार श्री विश्वनाथ जी ठाकुर ये जो इंद्र के द्वारा कृष्ण के लिए जो दिया गया अपशब्द है उनको सारस्वत अर्थ देते हुए ये साक्षित किया कि इंद्र के द्वारा अपशब्द अत्यंत कृष्ण की स्तुति है.
So the clouds, Sampartaka cloud was hurling down bolts of lightning and blocks of ice and it was creating a very freezing condition.
तो ये संपर्क कारण जो है वो बहुत भयानक बादल आए और बारिश गिराने लगा और बिजली चमकने लगे, गरजने लगे, भयानक सा वातावरण उत्पन्न हुआ.
There was so much rain that you couldn't tell high or low places of the land. Everything became filled up with water.
तो हम ये नहीं कह सकते थे कि कौन सा ऊंचा जमीन है, कौन सा नीचा जमीन है. इतना सारा पानी से पूरा गांव भर गया था कि
The cows were freezing, shivering due to the cold.
So ये जो गाय हैं, सारे गाय ठंडी की वजह से सब कांपने लगे.
And the small calves got underneath the bodies of their mothers, the cows, to get out of the freezing rain.
बच्चे जो हैं, माँ के उनकी गायों के शरण में जाके उनके
So the all the inhabitants of Raj and the cows, because of their suffering condition, they came down and fell at the feet of Krishna. Save us.
So Darishya Vajvati hai, Gai hai, aur sab aake Krishna ke baap aake unke charan mein shan lage.
And they said, Krishna Krishna Mahabhaga, Tvannatam Gopulam Prabhu, Pratum Arhati Devam Na Kupitad Bhakta Vatsalaha. They said, Krishna, Krishna, O fortunate one, please deliver the cows from the wrath of Indra. O Lord, you are so affectionate to your devotees. Please save us.
So, Krishna, Krishna, Mahabhaga, O, aap bhaktos ke prati bahut daya ki bhavna rakhte ho, to hum bade dukhi hain. Aap hi ekmatra ho.
So Krishna could understand that the inhabitants were almost finished, all this devotees, were almost finished due to the freezing rain of Indra, and that this was the work of Indra because Indra had become angry due to the stopping of the Indra Yajna.
And
Indra actually is supposed to be in the mode of goodness, but due to his false pride, he is considering himself all powerful.
So Indra अत्यंत सत्वगुण में होना था उनको, लेकिन इसके अहंकार की वजह से वो अपने आप को बड़े शक्तिशाली सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सोचने लगा.
I somehow or another have to break the pride of Indra, and it's also my wish that these rich bhaktis who are under my shelter should be protected.
तो ये मेरा इच्छा है कि इस सोचने लगे हैं कि इंद्र का जो अहंकार है उसको मुझे तोड़ना है और दूसरी बात है कि ब्रजवास जी जो मेरे शरण में आए हैं उन सबको भी रक्षा करना है.
So Krishna left Vrindavan and went to Govardhan.
तो कृष्ण जो है वृंदावन से गोवर्धन की ओर गए.
Now Vishwanath Chakravarti Thakur says that although it was raining like anything, the arrangement of Yogamaya, she parted all the clouds, so when Krishna went from Vrindavan to Govardhan, not one drop of rain touched him. His turban was dry, his dhoti was dry, his chadar was dry when we reached Govardhan.
जब गोवर्धन की ओर गए तो उस समय उनका कोई अंग जरा सा भी गिरा नहीं होता बारिश की वजह से. उनका जो धोती है, उनका पगड़ी है, ये सब सूखा हुआ था.
And then Krishna with his left hand he lifted Govardhan hill just like a child picks up a small mushroom.
मशरूम जैसे एक बच्चा जो है एक मशरूम को उठाता है. और इसी प्रकार कृष्ण ने क्या किया कि बाएं हाथ के छोटी उंगली से पूरा बोल दो दोनों को.
बरसाती
काका
कृष्ण सर. सो इफ यू लाइक प्लीज कम अंडर दिस हिल and take shelter from them.
तो जिसने कहा सारे प्रजातियों के शायद आप सब एक गोवर्धन के नीचे आके आप सुरक्षित हो सकते.
So how many cows does Nand Maharaj have?
इतने गाय नंद महाराज के पास.
Nine lakhs.
नौ लाख.
Some say 5 lakhs, some say 9 lakhs. Okay, we'll take 9 lakhs.
Okay, नौ लाख हो जाएंगे.
That's a lot of cows. Right? And if you look at Govardhan, it's only about 2 kilometers wide maximum.
So if you look at Govardhan, it's only 2 kilometers wide.
Chora is only 2 kilometers. Maybe this way it is longer, but this way only 2 kilometers. So how can 9 lakh cows fit under 2 kilometers?
So 9 lakh cows, 2 kilometers, how can they fit under 2 kilometers?
But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explained that when Krishna touched him with his hand, Govardhan became so ecstatic with transcendental emotion, he expanded himself to 32 miles.
So, Srila Vishwanath Thakur Varnan karte hain ki jab jaise Krishna Govardhan ko sparsh kiya तुरंत गोवर्धन आनंद में अपने आप को 32 में दौड़ा अपने आप का शरीर को विस्तार हो
गया. That's four yojana.
32 में क्या आप देखें 4 yojana.
8, 16, 16, 16, 32. 4 yojana. And therefore there was plenty of room for everybody.
तो इसलिए उनके पास बहुत सारा जगह थी सब लोगों को.
So for 7 days Krishna held up Govardhan Hill and he told everyone, don't worry, it won't slip from my hand, everything will be there.
सब लोगों ने कहा कि आप चिंता मत करो मेरे हाथ से चिंता मत करिए पर्वत.
So because of their great attraction for Krishna, their love for Krishna, all the inhabitants of Braj, all the cowherd men, the gopis, they came under the Govardhan tree.
So Krishna Ji bahut prem hone ki wajah se aur vishwas hone ki wajah se sab itne vishwas kiye sab log Govardhan ke paas
aaye. And they had great transcendental exchanges in that 7 days. No one felt hungry. No one felt thirsty. Everyone was only meditating on Krishna.
So pura saat din ka kisi ko bhookne laga pyaas nahi laga bahut divya ras ka aadan pradan hua Krishna ke saath.
Krishna was also meditating on his devotees in those 7 days.
Krishna apne bhakton ke upar dhyan karte the 7 din ke liye.
Especially Krishna was noticing the beauty of the gopis. And Krishna became so ecstatic by seeing the beauty of the gopis that his hand shook a little bit. And that way Govardhan was a little tilted. And then Nanda Maharaj and all the cowherd men put up their sticks. So when Balaram saw that, he smiled. Because he knew that Krishna could hold up the hill, no problem. And he was laughing at the cowherd men that they were trying to help.
तो बलराम ने देख के हंसने लगे तो मालूम था कि कृष्ण इस प्रकार क्यों कर रहे हैं और ये देखे कि ये डंडा लगा के जो रहे हैं एक बार तो वो भी कुछ काम का नहीं.
So when Krishna saw Balaram smile, he thought Balaram knew that he was watching the gopis and therefore his face became red.
तो कृष्ण जैसे बलराम जी को अच्छे से देखा तो तुरंत उनको मालूम पड़ा कि बलराम ने देख लिया मुझे गोपी को देखते हुए
So in this way, the 7 days passed just like that. We didn't realize that all of the Vrijvasis, the cows, were completely protected by Krishna. And therefore he told his clouds, okay, you come back now.
So this is what we know for now. Krishna is dying.
So the sun came out, everything became dry very quickly, and Krishna said, okay, now you can go.
So वापस सूर्य प्रकट हो गया और हर चीज जो है सूख गया और तब कृष्ण ने कहा सारे विद्वासी को सीधे शांत हो गया आप क्या
And all of the cowherd men packed up their bullock carts and they gathered their cows and they all went outside from underneath Govardhan. So, and then Krishna, very carefully with his left hand, set Govardhan down very gently back in the same place.
So Krishna apne dahi haath se kya kya Govardhan ko niche rakha.
Shri Giriraj Maharaj ki
jai.
The Indra realized he had made a big mistake. He became very fearful and ashamed.
तो इंद्र को बहुत शर्मिंदा भी हुआ और डर भी लग रहा था.
That he had not recognized his master.
तो उनके जो वास्तविक मित्र है उनको नहीं पहचानना गणेश जी प्रकार होगा.
He went to Lord Brahma to ask him what to do.
तो इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने पूछा मुझे क्या करना है.
And Indra said, you better go and pacify him.
तो ब्रह्मा जी ने कहा इधर को जाओ जाकर उनको शांत करो.
So being very ashamed, the next day, Lord Krishna went to Govardhan just to see if Govardhan was okay, because so many thunderbolts had been thrown from the sky and was hitting the back of Govardhan. Lord Krishna went to see if there was any damage.
So अगले दिन जो है कृष्ण गए गोवर्धन के पास देखने के लिए कि गोवर्धन को कुछ चोट तो नहीं लगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा बारिश हुआ, बहुत सारा बादल और बिजली चमकने लगा और वज्र का भी प्रयोग किया गया था उसके ऊपर. तो उसकी वजह से गोवर्धन को बराबर है कि नहीं देखने के लिए कृष्ण गए.
So Krishna went and he was standing near Govardhan in a secluded place.
So Govardhan ke paas hai aur ek rahat sthan mein wo khade the.
Actually Krishna wanted to give an opportunity for Indra to apologize.
Vastav mein Krishna jo hai Indra ko kshama yatra karne ka ek mauka dena chahte the.
Lord Krishna had cut Indra's pride, but he didn't want him to have to apologize in front of everybody. So he came in a secluded place so Indra could come and offer his obeisances without the public view.
तो कृष्ण चाहते हैं कि इंद्र जो है उनको माफी मांगने का एक मौका दो, क्योंकि इन सबके सामने माफी मांगना इंद्र से नहीं हो पाएगा. तो एक रहस्य स्थान में अगर वहाँ के मुझे माफी मांगे तो अच्छा
है. इंद्र ब्रॉट विद हिम वन सुरावी काम.
तो इंद्र अपने साथ में एक सुरभि गाय को लेकर आए.
सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन दैट देयर्स टू प्लैनेट्स. One is Goloka, that's in the spiritual world, and there's also a Goloka that is in near about the heavenly planets.
So, Krishna and Balaram both are mentioning that there is a Goloka in Adhyatmi Jagat, and another Goloka in Bodhi Jagat, which is on the ground of the
planets. Because Indra wouldn't be able to move around with that Saravi cow from the Goloka, Krishna's planet, so therefore that cow was from the other Goloka, from the material world.
So Krishna jo hai wo Indra ka koi yogita nahi hai ki wo adhyatmik taraf ke jo surabhi gaay ke saath aaye, isliye ye Indra ke saath mein jo surabhi gaay aayi hai wo is bhautik jagat ki Goloka se aaya hua surabhi gaay hai.
So when Indra came before the Lord, he pulled his hands and he explained to the Lord that your form is completely transcendental, beyond the three modes of material nature.
जैसे इंद्र आए कृष्ण के पास और प्रणाम करके उन्होंने क्या स्तुति करने लगे, कहने लगे कि आपका जो शरीर है वो तीनों गुणों से परे है और दिव्य स्तर में है.
And because you're completely transcendental, your form is transcendental, you're never involved with such things as greed, anger, lust, or envy.
तो आपका जो शरीर दिव्य है, आपका रूप दिव्य है, इस वजह से आपके अंदर इस प्रकार के काम है क्रोध या लोभ इत्यादि चीजें नहीं है.
You and you punish to protect the devotees, you punish the wicked, and you protect the devotees.
तो आप जो है दुष्ट लोगों को आप सजा देते हो और भक्तों को समर्थन करते हो.
You are the protector of the whole universe, you're the father of everyone, and you're the controller of the insurmountable time.
तो आप सभी लोगों का रक्षक हो और सबके पिताजी हो, साथ साथ में आप समय जो काल जो है उनके भी नियंत्रक हो.
You come in your various incarnations and you cut down the pride of those who falsely think themselves controlled.
तो आप अलग अलग अवतारों में आते हो, आके अलग अलग अनेकों लोगों का जो अहंकार है उनको तोड़ते हो, जो अपने आप को ईश्वर मान के बैठे हैं.
And even fools like me who are falsely proud, when they see how you control time and everything else, even they lose their false pride.
तो जैसे मूर्ख, मेरे जैसे मूर्ख हैं, जब वो आप किस प्रकार काल को नियंत्रण करते हो ये दर्शन करने मात्र से वो हमारे अंदर जो अहंकार है वो नाश हो जाता है.
And you punish them simply to instruct them.
असल में आप जो सजा देते हो वो सजा लोगों को सुधारने के लिए उनको उपदेश देने मात्र.
I was so engrossed due with my power that I didn't recognize you. Please forgive me for my foolishness, and may I never be so foolish again.
So, अंतिम में मेरे अंदर जो ये अहंकार के वजह से विमुक्त आ रही है, तो आपने मुझे दुबारा है, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ मुझे आप माफ कर दीजिए, और साथ में इस प्रकार की विमुक्तता जो है भविष्य में कभी नहीं आए.
You always come to this world to do away with the persons that are creating disturbance and to protect your devotees.
So, आप सब आते हो जगत में, लोगों को जो इस जगत में अनेक अनेक प्रकार के अपराध उत्पाद मचाते हैं, सबको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए और भक्तों को संरक्षण देने के लिए आते हो.
You are the chief of the Yadu dynasty, and I offer my obeisances unto you.
आप यदु वंश के प्रभु को और मैं आपको प्रणाम करता हूँ.
You take various forms just for the pleasure of your devotees.
आप अलग अलग रूपों को धारण करते हो केवल आपकी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए.
You're actually the seed of everything, and you're the soul of the whole universe.
आप सभी चीज का बीज हो और पूरा जगत की आत्मा हो.
Because you stopped my sacrifice, I became very angry.
आपने मेरे लिए जो किया गया जो यज्ञ है उसको आपने रोका था, इससे मुझे मेरे अंदर क्रोध आया.
When I tried to destroy your cowherd community with my devastating rain.
तब मैं ये जो गोपों की इस्तेमाल है वर्ष को मैं नाश करने के प्रयास किया.
And you stopped my devastating rain and gave protection to your devotees.
तो आपने अपने भक्तों को संरक्षण किया और जो ये जो बारिश है उसको बचाया.
And therefore you cut my pride.
इस प्रकार आपने मेरा जो अहंकार उसको नाश कर दिया.
And I realized that you are my supreme master and the supreme super soul.
तो मैं ये अभी साक्षात्कार हुआ कि आप ही मेरे प्रभु हो और आप ही एकमात्र मेरे परमात्मा हो.
And now I've come for your shelter.
मैं आपके शरण में आया हूँ.
So in this way Indra glorified Lord Krishna, the supreme lord.
इस प्रकार इंद्र जो है
Krishna said, it was out of mercy that I stopped your sacrifice. You became too intoxicated as the king of heaven. I want that you should always think of me. Naturally, if you think about it, that's all of our, we all have the same problem. Indra had a big problem and maybe we have a small problem. But it's the same problem. So whenever we get problems in life, some difficulty is there, we should know that this is Krishna. He's trying to cut our false pride so that we will always think of Him.
So कभी इस प्रकार का कठिन बात है जीवन में ये समझना चाहिए कि कृष्ण जो है हमारे अंदर ये अहंकार है उसको नाश करना चाहते हैं.
When we become falsely proud with whatever it is, everyone's proud in this material world. Prabhupada says, even a beggar is proud if he has one penny.
हर व्यक्ति इस जगत में अहंकारी है, लेकिन ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भिखारी भी अगर उनके पास एक रुपए भी होता है उसका एक रुपए का अहंकार रहता है.
So as devotees, we should know that Krishna is extremely merciful. If he drags us down from our opulent position and puts us really in a bad situation, that's for our
benefit.
If you look at it from a karma point of view, it seems like, oh, बहुत पापी का आदमी है, देखो उसके कितने तकलीफ के पास आते हैं, बहुत पापी आदमी है. But devotees don't see like that. Devotees shouldn't see like that. Because if a devotee gets troubled, it's mercy. It's Krishna is so merciful to that devotee, he's giving him so much trouble.
लेकिन भक्तों को ये तीन प्रकार की नजर नहीं रखना चाहिए ये देखना चाहिए कृष्ण का विशेष कृपा है इस भक्त के ऊपर या मेरे ऊपर ताकि मुझे या उस भक्त को इतना सारा दुख मिल रहा है
We can make a mistake because we don't see things properly. Who has Krishna's mercy and who doesn't have Krishna's mercy?
तो हम हमारे पास ऐसा बुद्धि नहीं है कि ये जानने के लिए कि किसके पास कृष्ण कृपा है किसके पास कृष्ण कृपा नहीं है
We should think that, oh, he has so much money, he has Krishna's mercy?
अब ये सोचना नहीं चाहिए कि ओ ये तो बहुत धनी है इससे कृष्ण विशेष कृपा है उसके ऊपर
And this devotee is poor, so he doesn't have Krishna's mercy?
और ये भक्त बहुत गरीब है तो इसके उनके ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है
And this devotee can speak very nicely, so he has Krishna's mercy. And this devotee, he's only distributing charanamrita, so he doesn't have Krishna's mercy. This is not
proper.
Because we don't know who has Krishna's mercy. Therefore, devotee should always be very respectful to each and every person.
इसलिए सारे भक्तों जो है अन्य भक्तों के प्रति हर एक व्यक्ति के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करना
चाहिए
आपको मालूम नहीं है जिसके कृष्ण कृपा किसके किसके पास है
यू मे बी अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण बट आई कैन्ट टेल
तो हो सकता है कोई व्यक्ति कृष्ण शुद्ध भक्त हो लेकिन मैं नहीं बोल सकता कौन है
हू कैन टेल
कौन कह सकता है
चैतन्य महाप्रभु कैन टेल
चैतन्य महाप्रभु कह सकते
Srila Prabhupada can tell. But I can. So therefore, it's best for me, I should be respectful to each and every devotee. And Krishna is trying to help us cut our pride in various ways so that we can become his always think of him, his pure devotee.
So
So then Krishna said to Indra, now you go back and do your duty, but always remain very sober and always think of me.
So Krishna Indra kaha, ठीक है तुम वापस जाओ, जैसा जो कर्तव्य हो सब निभाओ, लेकिन कभी अहंकार मत करना और हमेशा मेरा ध्यान रखना.
So Indra, in one sense, he passed the test. Because he became humble.
Indra jo hai wo namra ho ke isse pata lag gaya ki unhone uska pariksha ko pass kar diya hai.
So Krishna is also giving us a test.
Krishna bhi humko pariksha dete hai.
And we have the power to pass the test. Krishna never tests his devotee so hard that he can't pass the test.
So Krishna aisa pariksha नहीं करते भक्त का जो परीक्षा में उत्तर नहीं हो सकता है
but we don't always pass the test.
हम हमेशा इस परीक्षा में पास हो सकते हैं
Because usually when we get some trouble, we think he said this and she did that and he did this and he did that, therefore I have trouble.
तो जब हमको कोई समस्या आती है तो तुरंत हम क्या कहते हैं इसकी वजह से हुआ है उसकी वजह से हुआ है ऐसा हम सोचते हैं
We never see Krishna. We see someone else.
आप कृष्ण को नहीं देखते हैं, किसी और को देखते हैं.
That means we didn't pass the test.
इसका अर्थ है कि हम वो परीक्षा में पास नहीं हुए.
हमारा परीक्षण नहीं हुआ. That's no good. Therefore, the devotee has to practice. It takes practice. It takes practice. It takes sadhana. One has to perform proper sadhana. Rise early in the morning. Come to Mangal Arati. Chant with the devotees, hear Srimad Bhagavatam. If one performs practical sadhana, then when the test comes, we'll think, oh, this is
Krishna. करना होगा, भागवत चर्चा करना होगा, ये सब करने के द्वारा ऐसी चीज प्राप्त होती है। जब हम समस्याएं आती है उस पढ़ करके परीक्षा में हम पास होते हैं।
Devotional service is a very practical thing, very practical. When I first joined the temple, my first service was clean the bathroom.
जब ये जो भक्ति जो है वो एक व्यवहारिक चीज है। जब मैं पहली बार मंदिर में ज्वाइन किया था समय सबसे पहला मैंने बाथरूम को साफ किया था।
And the devotees told me, if you clean Krishna's temple, then you clean your heart.
So Bhaktivinoda ne mujhe kaha ki agar aap mandir saaf karoge to apne hriday ko saaf kar rahe
ho. So I cleaned the bathroom.
So maine apna bathroom ko saaf kiya.
Then after a few months, I graduated to cleaning the box.
So kuch samay ke baad, kuch mahine ke baad, mujhe thoda sa promotion mila. Main bathroom saaf karna shuru kiya.
So these are practical things. Our hearts are filled with the wrong understanding. I am this body. I am American. I am Indian. These are all wrong. So we need practical engagement in devotional service to clean away the wrong.
सबको एक व्यवहारिक ऐसा योजना होना चाहिए ताकि हमारे हृदय में जो संबंध है वो दूर हो जाए। इस प्रकार का सोचना कि मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ, ये सब चीजें गलत धारणाएं हैं।
So along with Indra came the Surabhi cow. And she said that actually Lord Krishna is our protector. He's our real Indra. And he's our real protector. Therefore, we want to worship you by doing Abhishek.
So Surabhi Jai ne kaha ki asal mein Krishna hi vastavik Indra hai, to hum Krishna ka Abhishek karna chahiye.
So the Surabhi cow began to bathe Krishna with her milk.
So Surabhi gai jo hai Krishna ko apne doodh ke dwara abhishek kara rahe hai.
And Indra on his with his elephant Airavrat, he took Ganga jal and Jamuna jal and he began to sprinkle that through his trunk on Lord Krishna.
So Krishna Indra ke saath mein Airavrat bhi aaya tha. हैराम भी कृष्ण का अभिषेक करने लगा अपने गंगा यमुना जल के द्वारा।
So in that way Krishna was bathed with the milk of the Surabhi and the Ganga and the Jamuna jal, and he was very pleased.
तो गंगा यमुना और जल के साथ और सूर्य गाय का दूध से अभिषेक हो रहा था, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए।
So this evening we will bathe Krishna with the milk from the cows and from the sacred waters, and that will please Krishna very much. So on this auspicious day, when we're watching the Abhishek, we should think of how Indra came to his senses. And we should pray to Krishna that on his birthday, we should also be allowed to come to our senses.
तो अभिषेक करने के समय हमको स्मरण करना चाहिए, अभिषेक करने का दर्शन करने को स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया और हमको यात्रा करना चाहिए कि इस प्रकार इंद्र का अहंकार को तोड़ के उनको वापस अपनी स्थिति को स्मरण दिलाया, उसी प्रकार वे अहंकार को तोड़ के जो आप वास्तविक स्थिति है उसको मुझे भी स्मरण कराए।
ठीक है, and let us make everything auspicious today by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Jiraj Maharaj Ki Jai, Shri Krishna Bhagavan Ki Jai, Shri Krishna Janmashtami Mahotsav Ki Jai, Nitai Gaur Premanand Ki Jai. Jai Hind, Jai Hind.
वादन करेंगे या बोलो उन्होंने रूप में आप अभी तरीके से होता है जन्माष्टमी और बहुत दर्द इधर आए हमको धन देने के लिए इस बार हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
there's a nice book that has been released by Narayani Devi Dasi, and that book is called Stavamala, right? So this has all of the prayers by Rupa Goswami, and there's an MP3 CD also in there, and Narayani Devi, and one great vocalist from South India. What was his name? Okay, that was his name. And he is also chanting on the CD. So you can still be available if you can have it to make it part of your collection.
तो नारायण मास्टर जी ने एक गीत गिफ्ट किए हैं ये रूप गोस्वामी पाद रचित सर्वमाला है तो रूप गोस्वामी पाद ने सर्वमाला रचना किया ये संत के अनुसार सुभाष जी जय विद्वान है भाव धनन के साथ में नारायण मास्टर दोनों मिलके ये 44 ट्रैक उनको बहुत सही प्रचारण किए हैं आप उनसे निवेदन है इसको आप दे सकते हैं और आज जी ने करीब 200 जो किताब है जो इसका जो 500 रुपये का मूल्य है ये मंदिर के लिए आज काम रहे उसका जो भी आदम कंस्ट्रक्शन दे जाएगा कई वर्षों में निवेदन है कि उनको भुगतान करें ये सब किताब को लेकर
हरे कृष्ण।